Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav and with me is my co-anchor Sparsh Saxena.
धन्यवाद वैभव, नमस्कार. घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और हम आप सभी श्रोताओं का आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं. आज के इस अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और साथ ही चर्चा भी करेंगे. आज चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला. प्रकाश जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
शुक्रिया, नमस्कार.
और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव.
Beginning with the headlines, Prime Minister Narendra Modi highlights plight of Global South at G20 summit in Brazil, urges nations to prioritize adverse effects of global conflicts on food, fuel and fertilizer supplies. Prime Minister holds bilateral meetings with various leaders on the sidelines of summit. UK Prime Minister Keir Starmer announces resumption of talks for free trade agreement with India. Girl students and researchers should play leading role in developing innovations that address local and global soil challenges, says Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan. And domestic benchmark indices regain their positive momentum after days of downtrend. Sensex adds over 230 points. Nifty settles at 23,518.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण की दूरदर्शा पर प्रकाश डाला. प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए एक बार फिर से वार्ता शुरू करने की घोषणा की. कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छात्राओं और शोधकर्ताओं को स्थानीय और वैश्विक मृदा चुनौतियों का समाधान करने वाले नवाचारों को विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए. और घरेलू शेयर बाजार में कई दिनों की गिरावट का सिलसिला थमा और फिर से बढ़त देखने को मिली. सेंसेक्स में 230 अंक से अधिक की वृद्धि और निफ्टी 23,518 के स्तर पर बंद हुआ.
And beginning with one of the most important stories that is being covered all around the globe on the second day of the G20 summit at the Brazilian city of Rio de Janeiro, the first session, Sustainable Development and Energy Transition, will be addressed by Prime Minister Narendra Modi. The second session of the day will be held on digital infrastructure. Beside these sessions, the Prime Minister is expected to hold bilateral talks with the state heads of Brazil, Argentina, Chile and Australia. Now we go live to our correspondent in Brazil, Sakshi Singh, for latest updates. Sakshi, can you brief us about the events lined up for the day?
नमस्ते. आज जो G20 सम्मेलन का जो दूसरा दिन है, आज यहाँ पे दो सत्र आयोजित होने वाले हैं, जिसमें पहला सत्र है सतत विकास और ऊर्जा सत्र, एनर्जी ट्रांजिशन का, जो अभी कुछ ही समय में शुरू होने की उम्मीद करी जा रही है. प्रधानमंत्री भी इस सत्र को संबोधित करेंगे. और जो दूसरा सत्र है आज का, जो दोपहर में होगा, वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा. इसके बाद कुछ रिव्यू मीटिंग होंगी G20 समिट की, और उसके बाद जो समापन समारोह होगा उसमें औपचारिक तौर पे अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को सौंप दी जाएगी. भारत के दृष्टिकोण से सत्र के अलावा उम्मीद करी जा रही है कि प्रधानमंत्री ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों के द्वारा द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. और उसके अलावा इप्सा का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज होने की भी उम्मीद करी जा रही है. धन्यवाद.
Thank you so much, Sakshi, for that live update from Rio de Janeiro, Brazil. On the first day yesterday, the G20 summit saw the launch of a global alliance against poverty and hunger, supported by 80 nations, earlier addressing a session on social inclusion and the fight against hunger and poverty. Prime Minister Modi said, Global South is facing crisis due to conflicts around the world. He highlighted the adverse effects of global conflicts on food, fuel, and Prime Minister Narendra Modi held crucial meetings and several interactions with global leaders on the sidelines of the G20 summit in the Brazilian city of Rio de Janeiro. The Prime Minister has shared details of his discussions through a series of posts on social media, highlighting his engagements with global leaders today. During his meeting with the British Prime Minister Keir Starmer, Prime Minister Modi announced the opening of two new consulates in the United Kingdom. Both leaders reaffirmed their commitment to strengthen India-UK comprehensive strategic partnership with the focus on economy, trade, new and emerging technologies, etc., among others. UK Prime Minister announced the relaunch of the stalled talks for a free trade agreement FTA with India early next year. The Prime Minister's meeting with the French President Emmanuel Macron was focused on the closely working sectors of space, energy, artificial intelligence, AI, and other futuristic areas. Following the meeting with the EU President, Prime Minister Modi said, India will keep working closely with the EU for the global good. With Indonesian President Prabowo Subianto, the Prime Minister discussed enhancing ties in commerce, healthcare, and security, marking 75 years of India-Indonesia diplomatic relations. On the other hand, talks with Portuguese Prime Minister Luis Montenegro focused on renewable energy, green hydrogen, and defence cooperation.
कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार सतत और लाभदायक कृषि तथा सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली पहलों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 को वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य अब वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 30% कृषि योग्य मिट्टी खराब हो चुकी है और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी को नुकसान पहुंचा है। श्री चौहान ने कहा कि सरकार देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्राओं और शोधकर्ताओं को स्थानीय और वैश्विक मृदा चुनौतियों का समाधान करने वाले नवाचारों को विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने शिक्षा प्रोत्साहन और आधुनिक तकनीक के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने का आह्वान किया। अब नजर डालते हैं आज के बाजार पर। घरेलू बेंचमार्क सूचकांक में लगातार चल रही गिरावट के बाद आज बढ़त देखने को मिली। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 239 अंक की तेजी के साथ 77,578 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 65 अंक की मजबूती के साथ 23,518 पर रहा। बात करें बीएससी के मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो दोनों ही सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही 0.9% से अधिक के फायदे में रहे। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 17 में आज बढ़ोतरी देखने को मिली।
Domestic benchmark equity indices today regained their positive momentum after days of downtrend driven by value buying at lower levels and rally in blue chip stocks. Snapping its four-day falling trend, the 30-share BSE Sensex rose 239 points or 0.31% to close at 77,578, while the NSE Nifty 50 added 65 points or 0.28% to settle at 23,518, reversing its 7-day losing streak. The broader market at the Bombay Stock Exchange also ended in positive territory. The mid-cap index gained 0.94% and the small-cap index added 0.9%. In the Sensex index, 17 out of 30 companies logged gains. Among the top gainers, Mahindra & Mahindra increased over 3.5%. Tech Mahindra and HDFC Bank rose over 2.2% and Sun Pharma gained over 1.5%. Conversely, in the top laggards, Reliance shed over 1.5%, SBI Bank lost over 1.4%, and Tata Steel fell 1.3%. In sectoral indices at the BSE, 17 out of 20 sectors ended with gains. Among the top gainers, realty as well as auto advanced over 1.4%, services and consumer discretionary gained over 1.2%, and focused IT added over 0.8%. Meanwhile, the three laggards were metal declined 0.9%, energy dropped over 0.6%, and oil and gas shed over 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,362 companies advanced and 1,601 declined, while 96 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 52 companies hit their 52-week high, while 65 hit their 52-week low.
प्रकाश जी, इतने दिनों से लगभग गिरावट बनी हुई थी, लेकिन आज मार्केट ने थोड़ा सा रिलीफ दिया है, किस तरह से आप जिसको देख रहे हैं?
कम से कम थोड़ा सा रिलीफ तो दिया, ये बड़ी राहत की बात है।
जी,
क्योंकि क्योंकि काफ़ी दिनों से मार्केट में बड़ा हलचल मचा हुआ था और मार्केट लगातार गिरती जा रही थी
जी,
और काफ़ी स्तरों तक गिरती जा रही थी। तो ये एक थोड़ी एंग्जाइटी का विषय बना हुआ था इन्वेस्टर्स के बीच में, वही क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार बिकवाली कर रहे थे
जी।
और आज सुबह बड़ी अच्छी मार्केट खुली और लगा कि एक बड़ी अच्छी रिलीफ रैली आने वाली है
जी।
लेकिन वो रैली ज़्यादा चली नहीं। सुबह एक एक वक्त पे 1000 पॉइंट ऊपर था, 1000 से भी ऊपर पॉइंट था, और फाइनली जो एंड हुआ 239 सेंसेक्स एंड हुआ
जी।
तो सूरत में रैली आई, लेकिन अभी ये जो है एक तरह का टेक्निकल रैली है
जी,
क्योंकि
कंटिन्यू नहीं हुआ है वो जी।
टेक्निकल रैली इस मायने में है कि ओवरसोल्ड हो चुके शेयर, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। शॉर्ट सेलर्स को कवर करना पड़ता है कई बार, और थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान हमारी मार्केट्स को सुबह एशिया पैसिफिक मार्केट से मिला, जो ग्रीन में चल रही थी, हरे रंग में निशान में चल रही थी। उसके बाद दोपहर आते आते यूरोप से संकेत आने लगे, वहाँ मार्केट रेड में चली गई दोबारा
जी।
और फिर यूएस फ्यूचर्स भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे थे, तो मार्केट में दोबारा प्रेशर आ गया, और इस सूरत में मार्केट जो गेन्स थे दिन में वो काफ़ी हद तक वाइप आउट हो गए, लेकिन कुछ गेन्स हमें मिले
जी।
अभी हमारी जेब में कुछ गेन्स हैं
जी।
Mr. Chawla, there has been a lot of talk about the stocks in the IT sector, in the communication sector, in technology sector, and especially the technologies related to the future, which is artificial intelligence and many other technologies that are yet being worked upon. Now, with the G20, the 19th summit being held in Brazil, which will soon be coming to an end, and with India pushing for many futuristic technologies for many things such as cybersecurity, IT sector, and with the fact that we know that these technologies are for the future, they are for the betterment of society, how do you think these shares will be doing in the future now that we know that on one hand the US elections have been settled and on the other hand there will be many decisions that will be taken in G20?
Well, I'll take it in different phase, different terminology.
Sure.
One, that you talked about technology. India has been on top of the technology movement, so to speak, in terms of resources, in terms of its willingness. After all, in G20, one of the subjects is on the digital infrastructure.
Absolutely.
So India has been on top of digital infrastructure. Look at the way we have done in UPI and electronic payment overall. Then you talked about the futuristic trends in the share market vis-a-vis the global environment. One, there are two things. One is the technology, other is the green climate. Like it or not, whether Trump may like or may not like it, the climate change cannot be wished away. So the businesses of the world have realized the energy transition, again, incidentally, it also has been one of the subjects at G20 today. Energy transition relating to the climate change, and it also has to be seen in context of technology. Technology in itself is not enough. How do you afford it? Access to technology is important. Whether, again, mind you, there's another topic called Global South. One of the important issues in Global South is the access to technology, affordability, whether technology is accessible to all, rich or poor. So the stock market or the markets, the financial markets, do not operate in isolation. They operate in the overall global context, in the backdrop of geopolitical conflicts, in the backdrop of severe threat of climate change. The technology has to come in, but technology in itself is not enough. It has to be affordable, it has to be all pervasive, and sooner or later this also reflects in the financial markets as well.
So Mr. Chawla, as you've rightly said, that the stock markets, be it in India or abroad, they work not in isolation but with social and global context and with everything in the backdrop that is going on. So do you believe that as companies and as individuals, we have realized that technology is an indispensable part and we have to evolve with it? Will the stakeholders and especially the investors, which are not just in India and abroad as well, who are investing in not just Indian markets but abroad, they will also realize that there is a time that we should focus on those companies which are transitioning according to climate change and sustainability in the future?
That's why you see a new IPO coming in India, which is related to the solar panels. Even in the midst of a downtrend in the market, that IPO opened very well. Renewable. There's a focus on renewable energy. And yes, investors do agree and do realize that this cannot be wished away. It's there. Take, for instance, Delhi smog today. Now, whether we like it or not, we have to, as a country, we have to move towards electrification of vehicles. The new vehicles, we must ensure that at least a vast majority of the new vehicles which are being registered should be coming from the EV space. That is the transition we are talking about. We are talking about solar, we are talking about wind, we are talking about electrification of mobility. And that's the future stock markets, other financial markets do realize.
Absolutely. And taking cues from what Mr. Chawla just said, let's move over to our next story. India is making efforts for transitions to electric vehicles. Central government is working to reduce dependence on fossil fuels and reducing carbon emissions. While addressing a national conference on accelerating e-mobility, enablers and imperative in New Delhi, Union Minister for Heavy Industries and Steel, H.D. Kumaraswamy, said that the government is leading the nationwide push for electric vehicle adoption, contributing to the country's ambitious net zero target for 2070.
Innovation and research will be key in driving down costs and improving the efficiency of electric vehicles. We are actively supporting research initiatives in battery technology, charging infrastructure and recycling. India's research institutions, in partnership with the industry, are exploring innovations that will reduce battery costs, improve range and make EVs a viable option for all sectors, including two-wheelers, buses and freight vehicles. Together, we have the power to make electric vehicles a primary mode of transportation in India.
Speaking on the occasion, advisor in the Prime Minister's office, Tarun Kapoor, said that the government is very clear in EVs' penetration to the market and complete replacement of diesel vehicles. He added that through PM E-Drive scheme, it is pushing to increase investments for charging infrastructure in areas including parking spaces, office and public areas in different cities.
In PM E-Drive, there is a huge outlay for charging. So on charging, while already through the oil sector companies, public charges are coming up in petrol pumps. So they are doing, I think, 24,000 or something, which will happen. It's going to be done within this year itself. But then we can go even more because now we have more money. Also, look at charging infrastructure in cities, wherever required, in parking spaces, in offices. Government will make investments and we will work, but on product and on getting more customer satisfaction and getting customer to choose this product, industry has to play a much, much larger role.
Our correspondent reports that through Centre's initiative, electric vehicle sales have seen a record surge, reflecting the growing momentum of EV adoption.
India is currently on a mission to a greener future with a 16% rise in electric vehicles registrations in the first half of 2024. Nation is transitioning towards sustainable transportation. With over 16,000 public charging stations and counting, India's EV infrastructure is getting a boost through central government's initiatives such as e-vehicle policy, faster adoption and manufacturing of electric vehicles, FAME, PLI scheme and PM E-Drive. The primary goal of this scheme is to accelerate the adoption of electric vehicles, develop essential charging infrastructure and establish a robust EV manufacturing ecosystem across the country. Under these schemes, electric vehicle sales have seen a record surge, reflecting the growing momentum of EV adoption.
अब नजर डालते हैं रुपए के हाल पर. विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 84.41 रुपए के स्तर पर दर्ज किया गया. डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान 106.42 के स्तर पर था. प्रकाश जी, 84.41 रुपए रुपए का क्या कारण है कि लगभग 84 रुपए से नीचे ही वो बना हुआ है, क्या कारण आप देख रहे हैं?
ट्रंप साहब की विक्ट्री के बाद दुनिया में देयर इज समथिंग कॉल्ड डॉलर इंडेक्स
जी,
तो ये दुनिया के इन्वेस्टर्स जो हैं वो डॉलर इंडेक्स के प्रति बड़े मोहित हो रहे हैं, और उसके चलते इमर्जिंग मार्केट्स की जो करेंसीज हैं उन पर प्रेशर आ रहा है, हम भी उन्हीं में से एक हैं। और दूसरा रीज़न कुछ हद तक हमारे जो फॉरेन फंड्स का सेल ऑफ हो रहा है वो भी है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अच्छी बात यह है कि इस पे ऊपर अच्छी नज़र जमाए हुए है, और जब जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना उसका अच्छे इफेक्टिव इंटरवेंशन जहाँ जरूरत पड़ती है करते हैं। तो हमारा जो रुपया है काफ़ी स्टेबल है, लेकिन मैंने आपको बताया जैसे कि डॉलर इंडेक्स, डॉलर की काफ़ी डिमांड है ट्रम्प के उनकी विक्ट्री के बाद
जी। अब नज़र डालते हैं हम अपनी अगली खबर पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े टेक सम्मेलन 27वें बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री सिद्धारमैया ने सॉफ्टवेयर, जैव प्रौद्योगिकी और एरोस्पेस के क्षेत्र में बेंगलुरु के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने बेंगलुरु, मैसूरु और बेलगावी में 3 वैश्विक नवाचार केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की। श्री सिद्धारमैया ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योगों के लिए मैसूरू के पास इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने की भी घोषणा की। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर। एशियाई बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.68% की बढ़ोतरी देखी गई। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट में 0.66% की मजबूती देखी गई। जापान का निकेई 0.5% के फायदे में रहा। हांगकांग के हांगसेंग में 0.4% से अधिक की तेजी देखी गई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी भी 0.12% बढ़ा। वहीं यूरोपीय शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 1.2% के नुकसान में रहा। जर्मनी का डैक्स 1.1% फसला और लंदन का फुटसी 0.4% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। प्रकाश जी, अगर एशियाई बाजारों को देखें तो हर जगह बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर यूरोप जब तक अंतिम समाचार मिलने तक तीनों ही इंडेक्स जो है लगभग नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे। एशिया में क्या ऐसी बात है जो बढ़ोतरी हमें हर जगह देखने को मिल रही है?
अभी क्या है, काफी शफलिंग से हो रही है, इन्वेस्टर्स के बीच में भी काफी ना पशोपेश चल रही है
जी।
वो एक तरह का एक मार्केट में उछाल आता है तो दूसरी में डिपेंड, आमतौर पर ऐसा नहीं होता लेकिन अभी हो रहा है
जी।
तो ये एक तो ये है कि ट्रांजिशन चल रहा है अमेरिका के नए प्रेसिडेंट, इलेक्शन तो हो गए
जी,
लेकिन अभी अनसर्टेनिटी ये है कि उनकी उन्होंने अपनी टीम भी अनाउंस कर दी है काफी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज
जी।
लेकिन उनकी जो प्री इलेक्शन अनाउंसमेंट थी उससे काफी लोगों में एक थोड़ी सी बेचैनी है, एक एंग्जाइटी है भाई ये क्या करेंगे, क्योंकि टैरिफ का उन्होंने काफी एक तरह का बवाल मचा रखा था
जी,
क्योंकि हम तो टैरिफ बढ़ाएंगे, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लेंगे, तो उसके चलते चाइना में काफी उथल पुथल हो रही
जी।
हम लोग थोड़े से वो हैं, थोड़े से निश्चिंत नजर आते हैं क्योंकि हमारे टैरिफ ज़्यादा उतने इम्पैक्ट होने वाले नहीं है, मेन जो फोकस है वो चाइना पे है
जी।
और कुछ यूरोप में भी ट्रेड वार अगर हो जाती है तो कुछ यूरोप में भी इसका असर पड़ सकता है। और फिर पिछले 2 दिन से वार जो है वो भी काफ़ी बढ़ गई है, ये भी एक चिंता का विषय है। तो यूरोप जो आप लाल निशान में नजर आया, यूरोप में यूक्रेन रशिया वार उम्मीद की जा रही थी कि उससे डी एस्केलेट होगी, उल्टा एस्केलेट हो गई, तो ये सारी चिंताएं भी बनी है भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्रीन नजर आ जाता है अपने आप को तसल्ली देने लगी, लेकिन ओवरऑल मार्केट का रुझान जो है अंडरलाइन करंट जो है थोड़ा सा घबराहट में है
जी। लेकिन निवेशकों में निरंतर चर्चा बनी हुई है कि चीन जब से स्टिमुलस की बात हुई है तो चीन की तरफ ज्यादा रुख है निवेशकों का, विदेशी निवेशकों का, क्या ये बात, इस बात में कितना दम है?
दम इस बात में भी कंफ्यूजन है
जी।
चीन एक दिन स्टिमुलस अनाउंस करता है, दूसरे दिन थोड़ा रोक लेता है
जी,
ठीक है, मेटल्स में करता है। फिर चीन को भी ये सबसे बड़ी चिंता तो है कि भाई ट्रंप साहब कैसे हमारे से डील करेंगे, और वो स्टिमुलस जो है वो देने की किस सेक्टर को देना है, मेटल्स को दे रहे हैं काफ़ी हद तक, तो वो स्टिमुलस देते हैं वो भी आगे पीछे चलते रहते हैं, तो एक संभावना यही बनी हुई कन्फ्यूजन की स्टेट है, तो इसको हमको झेलना पड़ेगा कुछ दिन।
Moving towards the next story about the U.S. markets, two out of three major U.S. indices ended in positive territory yesterday, driven by gains in energy, communication services, and consumer discretionary stocks. The Nasdaq Composite gained 0.6%, S&P 500 added over 0.3%, while Dow Jones Industrial Average slipped 0.13%. Moving over to our next story, Prime Minister Narendra Modi has said that India's vision for a free, open and secure maritime network is finding resonance across the world. Mr. Modi stated this while lauding the efforts of Ministry of Ports, Shipping and Waterways for successfully organizing in Sagar Manthan, the Oceans Dialogue in New Delhi. He said that Sagar Manthan's success will build consensus for partnerships of a prosperous future of humanity. Earlier speaking at the maiden Sagar Manthan, the Great Oceans Dialogue in New Delhi yesterday, Shipping and Waterways Minister Sarbanand Sonowal said that India aims to revolutionise its maritime sector with an investment worth 80 lakh crore rupees to enhance port capacity, shipping, shipbuilding, inland waterways. Highlighting the Amrit Kaal Maritime Vision 2047, the minister said, India is preparing to build future ships that run on clean fuels. Mr. Chawla, what do you think? Who's future is more secured when it comes to technology and when it comes to production? When we see initiatives like Sagar Manthan being taken up by the government of India, when we see initiatives like Make in India and Make for the World being taken up, we see a huge surge in defense production in the country and a decline in defense imports. Do you believe that the mission of making India a production hub will pay in the longer run, and truly the Amrit Kaal will be dedicated to all those people who are enterprising in this direction?
Well, it all depends on, the goal has been given that you make India as a manufacturing hub of the world. Now we need to work on this goal, objective. So whether it's a defense production or cutting edge technologies like semiconductors or high technology automobiles, the issue is that now we need to really work on the big time projects so that our GDP share of manufacturing GDP really goes up, because we have no alternative but to boost our manufacturing. I mean, if we really want to go towards the goal of being a developed country, we need to push our manufacturing. And okay, we are catching up a little later, but then if you catch up with it later, you have the advantage of going with the latest of technology. So you can go in for cutting-edge technologies, whether it's in defense production or semiconductors or electronics. And now you have this opportunity of China Plus strategy being followed by the global multinational company and some of the governments also. So taking advantage of all this, there's an opportunity to be leveraged upon. And so far, things seem to be working well, but we need to work on the roadmap, on the goals. That is how we need to go.
So you're saying that the fundamentals are strong and we just need to carry on what we're doing and complete these tasks that have been done by the government?
Oh, yes.
Moving over to our next story about the crude oil prices slipped today. Brent crude was trading over 0.7% down at $72.73 per barrel. And WTI crude lost nearly 1% to trade at $68.49 per barrel when reports last came in.
सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 1.09% बढ़कर 75,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 0.81% बढ़कर 91,280 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई. गोल्ड पे आपका शॉर्ट कमेंट प्रकाश जी.
गोल्ड एक तरह का वॉर से रिलेटेड हो गया है
जी.
जब जब वॉर एस्केलेट होती है गोल्ड प्राइस चढ़ जाता है
जी.
और जब थोड़ा डी एस्केलेट होता है गोल्ड प्राइस नीचे हो जाता है
जी. बिल्कुल.
तो एक तरह का सेफ हेवन जो वाला इसका जो है वो बिल्कुल सही उतर रहा है. कल एस्केलेट हुआ गोल्ड चढ़ गया
जी.
तो ये इसके कॉन्टेक्स्ट में दिखना पड़ेगा
जी. प्रकाश जी कार्यक्रम में आने के लिए बहुत धन्यवाद आपका.
शुक्रिया.
और अंत में अंग्रेजी में हेडलाइंस एक बार फिर.
Before we close, reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights plight of Global South at G20 summit in Brazil, urges nations to prioritize adverse effects of global conflicts on food, fuel and fertilizer supplies. Prime Minister holds bilateral meetings with various leaders on the sidelines of summit. UK Prime Minister Keir Starmer announces resumption of talks for free trade agreement with India. Girl students and researchers should play leading role in developing innovations that address local and global soil challenges, says Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan. And domestic benchmark indices regain their positive momentum after days of downtrend. Sensex adds over 230 points. Nifty settles at 23,518. And that's it in this edition of Market Month. For now, Namaskar.